नमस्कार साथियों, तो चलिए बात करते हैं अगले मुद्दे पर। शिल्पी, तुम जानती हो किशोर किशोरियों में विकलांगता और मृत्यु का एक बड़ा कारण चोट लगना रहा है, और इसमें भी सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा पाई गई हैं।
बिल्कुल, और दीदियों, आकाश ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम अब आपसे बात कर रहे हैं चोट लगने और हिंसा के बारे में।
चोट के कई कारण हो सकते हैं, कई बार ये अनजाने में लगती है, जैसे कि सड़क दुर्घटना, डूबना, जलना या फिर गिर जाना।
और कई बार ये चोटें जानबूझकर भी लग जाती है, जैसे कि आत्महत्या की कोशिश या हिंसा या झगड़े या दंगों के चलते।
चोट से बचने के लिए उपाय करने बहुत जरूरी है, जैसे कि अनजाने में लगने वाली चोटों में अगर सड़क दुर्घटना से बचाव की बात करें तो यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, कार में सीट बेल्ट लगाना चाहिए, गलत ढंग से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और पैदल चलने वालों का सतर्क रहना वगैरह वगैरह।
बिल्कुल सही बताया तुमने आकाश, हमारी दीदियों और अन्य हितधारकों को। चलो अब आते हैं हिंसा से लगने वाली चोटों के विषय पर। हिंसा का मतलब है किसी व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति या समूह पर अपना बल या शक्ति दिखाने की कोशिश करना।
आप जानते हैं हिंसा का कितना गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है? ये हिंसा के शिकार इंसान या समूह को और कमजोर बना देती है। हिंसा उनके आत्मविश्वास, समाज में उनकी स्थिति, जीवन में आगे बढ़ने की मेहनत और कोशिश पर हमला करती है।
आकाश, तुम्हारी बातों में एक और मुद्दा मैं जोड़ना चाहूंगी। साथियों, हिंसा की जब बात होती है तो लिंग आधारित हिंसा को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। कई लोग इसे जेंडर के आधार पर होने वाली हिंसा भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि लड़के और लड़कियों के बीच उनके जेंडर यानी लिंग के कारण फर्क किया जाता है, और फर्क आगे चलकर कब हिंसा का रूप ले लेता है पता ही नहीं चलता।
समाज ने लिंग के आधार पर पुरुष और महिला के बीच काम, जिम्मेदारियां और अधिकार बांटे हैं। जैसे कि माना जाता है कि पुरुष घर से बाहर के काम करेंगे, आर्थिक जरूरतें पूरी करेंगे और परिवार को सुरक्षा देंगे। वो ऐसे सभी काम कर सकते हैं जिनमें शारीरिक बल और शक्ति लगती है।
हाँ, और वहीं महिलाओं के लिए समाज में नियम बनाए गए हैं कि वो घर संभालेगी और सबका पालन पोषण करेगी। अगर वो बाहर भी काम करे तो ऐसे काम जो उनके लिए तय किए गए हैं, जैसे सिलाई बुनाई, खेती, मजदूरी का काम आदि।
महिला को अक्सर पुरुषों से कमजोर माना जाता है, इसी सोच के चलते उनके साथ हिंसा भी होती है। हिंसा पर बात करना महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि अक्सर इसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार मान लिया जाता है। जानते हैं, हिंसा की शुरुआत होती है लिंग आधारित भेदभाव के साथ, जो हमारी जिंदगी में घुल मिल सी गई है।
और साथियों, इसलिए ये मुद्दा किशोर किशोरियों से काफी नजदीकी रिश्ता रखता है। कह सकते हैं कि इस उम्र में उन्हें भेदभाव समझ आने लगता है। रोजमर्रा की कितनी बातों में हम ये देख सकते हैं, जैसे कि पोषण, पढ़ाई लिखाई, काम और खेलने का समय, आय और मजदूरी, अधिकार और जिम्मेदारियां वगैरह वगैरह।
हिंसा कई तरह की हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा। हम क्योंकि किशोर किशोरियों की बात कर रहे हैं तो पॉस्को अधिनियम पर बात करना जरूरी है। इसका मतलब है वो कानून जो 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को यौन हिंसा से सुरक्षा और यौन हिंसा करने वाले के खिलाफ कड़े कदम उठाने की सुरक्षा देता है।
आपको बता दे, 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की के निजी अंग को छूना या अपने निजी अंग उन्हें छूने को कहना, चूमना, ऐसे छूना कि वो असहज महसूस करे, अश्लील शब्द या कोई लैंगिक संबंध का इशारा करना, उन्हें अश्लील फिल्म या तस्वीर दिखाना, बलात्कार या उनके शरीर का व्यापार करना, लड़का हो या लड़की, दोनों के ही मामले में ये सब POCSO कानून में हिंसा है।
जानते हैं, अगर किसी का बाल विवाह हुआ है तो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना या ऐसी शादी ही करवाना अपराध माना जाता है। 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़की के साथ सहमति या बिना सहमति किसी भी तरह से शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है।
POCSO कानून के तहत पुलिस तुरंत घटना की FIR यानी शिकायत दर्ज करती है और हिंसा के शिकार लड़के या लड़की को आपातकालीन इलाज की सुविधा, बाल आश्रय गृह, मुआवजा और कानूनी सहायता भी इसमें शामिल होती है। हिंसा करने वाले को तो सजा का प्रावधान है, लेकिन हिंसा के जानकारी होते हुए अगर कोई इसकी कानूनी शिकायत ना करे तो उसे भी 6 साल की कैद और आर्थिक जुर्माना देना पड़ता है।
साथियों, हिंसा के लिए कानून तो बने हैं, लेकिन जरूरी है कि हम हिंसा को होने से ही रोक दें। अगर लिंग आधारित भेदभाव को हम सब अपने निजी स्तर पर खत्म करने की ठान लें, अपने घर, दोस्तों, रिश्तेदारों, समुदाय में इसे लेकर एक दूसरे को जागरूक और संवेदनशील करें, तो हिंसा को कम किया जा सकता है।
बिल्कुल, और एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना होगा कि खास तौर से लड़कियां हिंसा के खिलाफ आवाज उठा सके और बात कर सके।
तो साथियों, इस भाग में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि RKSK पर आपको सरकार द्वारा मिली पढ़ने की सामग्री को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।